نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بقرة آيت نمبر 221 سے 228 221-228 تھوڑا سا آج کے سبق کو پیچھے والے سبق کے ساتھ ملاتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. آئیے پہلے آیت نمبر 221 کو دیکھیں. بالکل آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک دم موضوع بدل گیا. پیچھے والی آیتوں میں ہم نے بات کی تھی مال کے خرچ کی اور اس سے پیچھے شراب اور جوئے کا تذکرہ تھا. پھر اس سے پیچھے دیکھا جائے تھوڑا سا جائیں تو جہاد کی باتیں تھیں, قتال کی باتیں تھیں. بظاہر اگر سطحی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ایسے ہی مختلف چیزوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے, اور کوئی بہت پیار سے کہے گا کہ بہت سارے پھول جوڑ کر ایک گلدستہ بنا دیا گیا. لیکن جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, تو ہمیں ہر آیت دوسری آیت کے بیچ میں ایسے پیروئی بھی نظر آتی ہے کہ جیسے ایک لڑی ہے اور اس کے اندر مختلف موتی ہوتے ہیں. اقسام بر میں مختلف چیزیں ہم نے پڑھی اور وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھی لگے. یعنی نیکی کا مطلب یا اچھے کام کا فرق ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ بعض نیکیاں بندے کو خوشی دیتی ہیں لیکن بعض نیکیاں کر کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. پیچھے والے سبق میں ہم نے جب قتال کی باتیں پڑھی تھی تو وہاں یہ تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں قتال اچھا نہیں لگتا, وہوا کرہ لکم. آج پورا میڈیا شور مچائے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ, بس اللہ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ لائک فائٹنگ. یہ پچھلے سبق میں ایک آپ کمنٹ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم القتال, تم پہ فرض کیا گیا قتال بٹ تمہیں نہیں اچھا لگتا. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو لڑنا اچھا نہیں لگتا, لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو لڑنا اچھا لگتا ہے. تو بات کس کی ٹھیک ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی. تو وہاں دیکھا تھا کہ نیکی جو تھی وہ مشکل تھی, لیکن اچھی لگے, کڑوی لگے, میٹھی لگے, وہ تو کرنا ہی تھا. آج کے سبق میں یہاں سے میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ براہ راست خاندانی مسائل شروع ہو رہے ہیں. دین کا بہت بڑا حصہ معاملات کا ہے. یہ چند تھوڑی سی باتیں آپ انٹروڈکشن میں لکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اب یہاں سے لے کے انشاءاللہ تعالی جہاں تک طلاق اور عدت کے سارے مسائل چلتے جائیں گے وہ دکھے گا کہ دین اسلام کے چار بنیادی حصے ہیں, جس میں ایک بہت بڑا حصہ عقائد کا ہے, جس کو درخت کی جڑوں سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ عبادات کا ہے, جس کو درخت کے تنے سے ہم ملا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اوپر تیسرا بہت بڑا حصہ معاملات کا ہے. معاملات کو ہم دوسرے لفظوں میں حقوق العباد بھی کہتے ہیں. یہاں سے اب جو آج کا ہمارا سبق ہے, دو تین سبق تک ہم اللہ کے حق کی باتیں کم ہی پڑھیں گے. انسانوں کے انسانوں پر کیا حقوق ہے, کیا ذمہ داری ہیں, اور دوسری طرف آپ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہاں سے باقاعدہ اب طلاق کا موضوع شروع ہو رہا ہے. طلاق اصل میں ایک بنیادی ٹاپک ہے جو قرآن پاک میں ڈیٹیل سے یہیں آ رہا ہے, جو اگلے دو تین سبق میں آپ سنیں گے. لیکن طلاق کے بنیادی عنصر سے پہلے نکاح ہونا لازمی ہے. یہاں نکاح ٹاپک نہیں ہے, وہ آئے گا سورۃ نساء میں. اصل میں یہاں طلاق کا موضوع آنے والا ہے, لیکن طلاق سے پہلے نکاح ہونا لازمی ہے. کوئی غیر مرد کسی عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یعنی جب کبھی میرا تم سے نکاح ہو گیا اس کے بعد کی طلاق تمہیں ابھی دے دیتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز طلاق کے اندر آتی ہے عدت, گنتی, اور گنتی کا تعلق پیریڈز کے ساتھ ہے, حیض. اسی لیے آج آپ کو اپنے آج کے سبق کی دوسری ہی آیت میں ڈیٹیل سے حیض اور پیریڈز کی باتیں پتہ چلیں گی. ظاہر بہت عجیب لگتا ہے, اتنی پیاری کتاب جس کا پڑھنا ہے عبادت, جس کو بچے بھی پڑھیں گے, بڑے بھی پڑھیں گے, عورتوں نے بھی پڑھنا ہے, مردوں نے بھی پڑھنا ہے, اس میں اس قسم کے ایشوز کیوں آگے؟ تو جواب کیا ہے کہ اسلام نے عورت کے منتھلی سائیکل کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لگا دیا, جس میں طلاق بھی ہے, ایلا بھی ہے, رجوع کا بھی اسی سے تعلق ہے, اور شوہر بیوی کے تعلق کی حدیں بھی ہیں. تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب خواتین کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. چوتھا بنیادی حصہ ہمارے دین کا تزکیہ نفس ہوتا ہے, اخلاقیات بولتے ہیں آپ اس کو, مینرز ہے, ایٹیچیوڈ ہے, ایٹیکیٹس ہیں, لوگوں سے کیسے, غریبوں سے کیسے, امیروں سے کیسے. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام کا معاملات والا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں. پیچھے شراب کی باتیں تھیں, میں نے بالکل اس آیت کو سکپ کیا, وہ انشاءاللہ ہم آگے جہاں آئے گی وہاں بہت ساری ڈیٹیلیں دیکھیں گے. لیکن یہاں اللہ نے ذہن سازی کی تھی تو ہم نے بھی اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ گندی چیز ہے, اس کو حرام ہونا چاہیے. इन्फाक की बातें पढ़ ली, और अब आज पढ़ेंगे हम आयत नंबर 221 से। आप आयत में मेरे साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं, वला तनकिहुल मुशरिकाती, और ना तुम निकाह करो किन से, मुशरिकात मुशरिक औरतों से, हत्ता योमिन्ना, करना हो तो उसकी शर्त क्या है कि वो ईमान लाएं। यानी एक मुसलमान मर्द अपना निकाह करना चाहता है तो अल्लाह सुबहाना ताला जिसने निकाह को इबादत कहा, जिसने निकाह को फराइज के दर्जे तक कर दिया, वो इस बात पे बताता है कि निकाह करना जो है वो किस तरह करना है, मुशरिका से नहीं होगा। यहाँ भी मैं सारे लफ्ज़ों की वजाहत बताऊंगी, आप खुद ही देखेंगे कि मुशरिका कौन सी है। अभी सिर्फ मानी पे गौर कीजिए कि और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, हाँ मगर निकाह करना है तो उसकी शर्त क्या है कि वो औरत ईमान ले आए। पहली बात यहाँ वन लिख के अब सेकंड हिस्से पे चलिए आयत के, वला अमतुन, और अलबत्ता लौंडी, और अलबत्ता लौंडी कौन सी, मोमिनतुन ईमान वाली, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिका शिर्क करने वाली औरत से। यानी एक मोमिना लौंडी बेहतर है एक आजाद मुशरिका औरत से, वलो आजबतकुम, और अगरचे वो तुम्हें अच्छी भली ही लगती हो, अच्छी भी लगती हो। यानी अल्लाह ताला ने रिश्ता ढूंढने का मेयार सिखा दिया मर्दों को कि एक औरत वो मुशरिका है, खूबसूरत है, गोरी है, पढ़ी लिखी है, कमाती है, उसके मुकाबले में एक बिल्कुल सीधी सादी घरेलू सी गरीब घर की लड़की है, लेकिन इसमें ईमान है उसमें शिर्क है, तो तुम किसको चूज करो, मोमिना को कर लो और मुशरिका को छोड़ दो। साथ ही साथ अब औरतों को हुक्म दिया गया। अब नोट कीजिएगा, मर्दों को हुक्म दिया गया ला तन की हो, ता पे जबर है, क्योंकि एक मर्द अपना निकाह खुद कर सकता है। मर्द को निकाह से पहले अपने माँ बाप से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इसी तरह एक मर्द को दूसरी शादी करते वक्त पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी से भी जरूरत लेने की जरूरत नहीं। शर्त यह कि वो ये मर्द वाकई एक बाशऊर मर्द हो और उसको अपनी सारी जिम्मेदारियां पता है जो शादी के बाद उस पर लगने वाली हैं। जबकि इसके बरक्स एक औरत के बारे में क्या मामला है, फरमाया वला तुन के हुल मुशरिकीन। अब लफ्ज देखिए वहां क्या है, तन के हो, ता पे जबर है ना, तुम ना करो, एक्टिव वॉइस है इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन यहां पैसिव वॉइस में आ रहा है वला तुन के हो, और तुम ना निकाह करके दो। यहां किसको कहा जा रहा है, औरतों को कहा जा रहा है। क्या वहां मर्दों को कहा गया था कि मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, तो क्या औरतों को कहा जा रहा है कि तुम मुशरिकीन से निकाह ना करो, नहीं, यहां वला तुन के हो से औरतों को नहीं, औरतों के वाली, औरत का बाप, उसका भाई, जो उसका महरम दार है, जो उसका निकाह करेगा उसको कहा गया, और ना करके दो। तुन की हु क्या है, पैसिव वॉइस है। आप इसको देखें लाजिम और मुतअद्दी का फर्क आ जाता है बाज दफा, कि तुम ना निकाह करो अल मुशरिकीना मुशरिकों से। आप देखिए मुशरिकीना के लफ्ज के ऊपर जबर है ना, तो मुशरिकीना कौन होगा, मुफअलीना, क्या होगा ये लफ्ज, इसके अंदर आपको लफ्ज मिल गया कौन सा, बोलिए शाबाश, मफूल है ये। यानी निकाह का अमल किसके साथ हो रहा है, मुशरिक से हो रहा है, और करवाने वाला कौन है, एक औरत का वली यानी उसका बाप है। खैर तुम ना करके दो मुशरिकी ना मुशरिकों से निकाह, हत्ता युमिनु, यहां तक कि वो ईमान ले आए। यानी तुमने अपनी बेटी या अपनी बहन का निकाह अगर किसी मुशरिक से करना था तो उसकी शर्त एक ही है कि वो मुशरिक मोमिन बन जाए। ठीक है, यहां देखिए फिर आपको लग रहा है ना शख्सियत तो अंदर एक ही थी ना, लेकिन शिर्क के साथ उसको कबूल नहीं करो। यानी एक मर्द है, कमाता है, खाता है, पीता है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, वो एक ही मर्द है ना, आप समझे ना, कोई एक ए नाम का, कोई अब्दुल्ला नाम का एक शख्स समझ ले, सब कुछ है उसके पास, घर, खाना, उसकी जॉब है, डॉक्टर है, वट एवर, बट स्टेटस में क्या है कि वो भी मुशरिक है, और मुशरिक है तो शिर्क का असर उसके ऊपर होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई हो मुशरिक और उसके काम मोमिनों वाले हो। हाँ आज के दौर में ये बहुत आम है कि नाम चाहे इस्लाम का हो लेकिन काम जो है वो दूसरे होने लगते हैं। तो यहाँ क्या पता चला कि मर्द वही रहेगा लेकिन शर्त यह है कि वो ईमान ले आए। यहाँ से आपको पता चलता है कि इंसान दोस्त है हमारा दीन, हमारे मजहब को किसी इंसान से चिढ़ नहीं है। यानी मसलन ए है या अब्दुल्ला है या अहमद है या पीटर है या फलां है, अल्लाह को एज अ पर्सनैलिटी उस बंदे से कोई बैर नहीं है, उसके अकीदे से बैर है। ये है वो इतना बड़ा आप कहना चाहिए कि फॉरगॉटन पॉइंट जो आज पेरेंट्स रिश्ते करते वक्त भूल जाते हैं। हम इस पे बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी आगे चलिए। वल अब्दुम मोमिन, और ईमान वाला गुलाम, एक अब्द जो होता है जो मोमिन है, वो खैरुन बेहतर है, मिन मुशरिकिन शिर्क करने वाले मर्द से। अल्लाह माँ बाप को समझा रहे हैं कि देखो अपनी बेटियों के लिए रिश्ते करते वक्त ढूंढते वक्त तुम मेयार ईमान को बनाओ, क्योंकि ईमान वाला चाहे कोई गुलाम ही क्यों ना तुम्हारी बेटी के लिए मिल गया, वो यकीनन बेहतर होगा बहुत ज्यादा दौलत वाले खूबसूरती वाले मुशरिक की निस्बत। वले वो आज बकुम, अगरचे तुम्हें अच्छा ही क्यों ना लगे। पीछे क्या है आज बत कुम, ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है आज अबा, आज बत कुम क्यों था, क्योंकि वो मोनस की बात थी, एक औरत के लिए बात थी, और आज बकुम एक मर्द की बात है, ठीक है। चलिए अब यहां तक भी बात काफी थी, लेकिन अल्लाह सुभान तआला को इंसानियत से इतना प्यार है कि वो सिर्फ यस नो नहीं कहते, करो इधर निकाह इधर नहीं करना, क्यों खबरदार आगे से नहीं बोलते, मैंने कह दिया इफ आई से सो, नहीं अल्लाह हिकमत बताते हैं, इल्लत लिखे इसको, ये इल्लत है, वजह रीजन। आजकल के बच्चे तो फौरन पूछेंगे वाह क्यों नहीं, मुझे पसंद है मैं क्यों ना करूं उससे। तो अल्लाह ताला अब यहाँ माँ बाप को उसकी हिकमत सिखाते हैं क्यों ये अल्लाह का हुक्म है। उलाइका यदून इलन्नार, ये लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं, कौन लोग, मुशरिक और मुशरिका, उलाइका यदून इलन्नार, जबकि वल्लाहु यदउ, और अल्लाह बुलाता है, देखिए यदून जमा यदउ वाहिद, अल्लाह बुलाता है इलल जन्नति जन्नत की तरफ। अच्छा वहां के इलन नार, बस इतनी बात कह दी, वो लोग ऐसे गंदे रिश्ते जो अपने दीन में भी सच्चे नहीं होंगे, वो तो आपकी बेटी को खराब कर देंगे, आपके बेटे का घर उजाड़ देगी ऐसी औरत, जबकि अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, इतने काफी था ना। ओलाए का यदून इलन नार और वल्लाहु यदू इलल जन्ना, इतना भी काफी था बराबरी पे, नहीं वल मगफिरा, और अल्लाह मगफरत भी देता तुम्हें, यानी अल्लाह सिर्फ तुम्हें जन्नत की तरफ नहीं बुला रहा बल्कि तुम्हारे गुनाहों की मगफरत भी तुम्हें अता करेगा बिइज़्नी ही अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और वो बयान करता है अपनी निशानियां ताकि तुम नसीहत पकड़ो, ताकि तुम इस चीज पे गौर फिक्र कर लो। तो ये आयत आप देखिए एक बहुत अहम आयत है, यहां से जिंदगी का एक बिल्कुल नया रुख शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने शादी ब्याह के मामले में अपनी पसंद और नापसंद इंसानों को बता दी कि मैं तुमसे क्या पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे क्या चाहिए, मेरा तकाजा क्या है और उस तकाजे को पूरा करो। हकीकत यह है कि निकाह या शादी जिंदगी का एक बहुत सेंसिटिव मोड होता है। अगर आप देखें तो ये एक गाड़ी में से निकल कर बाहर निकलना या चलती गाड़ी में बैठने वाला मामला होता है। वजह क्या है इसमें कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही होती है। जिस घर में एक इंसान आंख खोलता है उधर उसको निभा करना या रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां मोहब्बतें फितरी होती हैं। अल्लाह ने मुझे आपसे हमारे माँ बाप के बारे में नहीं कहा कि चूज करो ये करो वो करो, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि जैसे भी माँ बाप होंगे हम उस घर में पल भर के जब बड़े होंगे तो हमें खुद समझ आएगी। लेकिन जब शादी होती है, मैं अपने जहन से इस चीज को कहती हूँ कि ये सेकेंड बर्थ है, मैरिज इज अ सेकेंड बर्थ। मैं अपने माँ बाप को चूज नहीं कर सकी, मैं अपने भाई बहनों को चूज नहीं कर सकी, पीछे हमने सबक में पढ़ा कि तकदीर अल्लाह के हाथ में, वी शुड बी हैप्पी वी शुड बी प्लीज्ड। इब्राहिम जो है वो अगर आजर के घर में पैदा कर दिए गए तो अगर दुनियादारी के नाते से कहा जाए तो इब्राहिम को अच्छे बाप नहीं मिले, और अगर नूह अलैहिस्सलाम के घर में कनान पैदा हो गया तो नूह को अच्छा बेटा नहीं मिला, वी अंडरस्टैंड। बट शादी के मौके पर अल्लाह ताला चॉइस हमें खुद देता है, बड़ी समझदारी की बात है। देखिए ये मौजू अगर हम समझ जाएं तो आज जो हमारे इर्द गिर्द नासूर फैले हुए हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं, टूटे हुए घर हैं, आज आप इस मुकाम पे अगर इस बात को थोड़ा सा समझें और फिर आगे सब्र करें इंशाल्लाह सूरत निसा का, तो सारा इब्तदाई टॉपिक ही निकाह और शादी और उसकी सारी हिल्लतें। यहाँ नेगेटिविटी में चूंकि बात हुई है ना ला तनकेहु से, थोड़ा सा अगर आप लफ्जों पे भी गौर करें ना कि वला तनकेहु और ना तुम निकाह करना, तो यहाँ देखिए जब भी कोई बात ना से शुरू होती है ना उसमें अहमियत होती है। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह, उसी ला से यहाँ बात शुरू हुई है। कल आपको मैंने वा के पांच मानी लिखाए थे, वा और के मानों में, माँ के मानों में, औ के मानों में, ताके के मानों में, यानी के मानों में। आज छठा एक मानी लिख ले, सिर्फ एक लिखाऊंगी, बाकी आगे चलते जाएंगे तो लिखते जाएंगे कि बास दफा वाव कसम के लिए आता है, कसमिया वाव होता है। वाला सुरिन नल इंसान लफी खुस, जमाने की कसम इंसान खसारे में है। अगले लफ्ज पे गौर कीजिए कि ला ना, आम लफ्ज है नफी के लिए। ला का लफ्ज जो है अरबी जुबान में, आप लिखिए दो चीजें, एक लफ्ज है नफी और एक है नहीं। आप में से किसको फर्क पता है इसका, नफी और नहीं? मैं आपसे कहती हूं आज बारिश नहीं हो रही, और मैं आपसे कहती हूं आप यहां ना बैठे, तो बारिश ना होना क्या है, फेल है, नफी है। मैंने आपको एक ऐसी खबर दी जो नहीं है। आज किसी का भी नाम ले लें, मिसाल है कि अजरा आज नहीं है, तो ये खबर है ना। और अगर मैं कहूं कि अजरा आप मत आइए, तो ये नहीं होगा। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। तो ला क्या है, नहीं है, नफी नहीं है, ये नोट करने की बात है। ला तद्रिब, मत मारो, ठीक है। इसी तरह ला जो होता है ना, नफी जिन्स के लिए आता है, यानी जिस चीज की ये नफी करता है, इसकी पूरी की पूरी जिन्स की नफी करता है। कैसे, ला रही बफी, कोई शक ही नहीं इसमें, किसी शक व शुबे की बात ही नहीं है। अब यहां क्या है, ला तन के हो, तो पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया, दैट्स इट। यहां भी यही मानी दिए जा रहे हैं, ला तन के हो, कंप्लीटली निगेशन है, अल्लाह ताला इज फॉरबिडिंग अस, हमें मना कर रहे हैं। मेरे जुमले को समझे आप, नफी नहीं है ये, नहीं है यानी डोंट है, ये अल्लाह का हुक्म है कि मत करना। ये अल्लाह ताला आपको मुझे मशवरा नहीं दे रहा कि यू शुड डू इट, यू शुडंट डू इट, नहीं, यू विल नॉट डू इट, ये मुराद है। यानी इसमें अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कहा है, ठीक है। और खास तौर पे जब ये किसी जुमले के शुरू में आता है ना, तो गवाही के लिए आता है। मसलन आप देखिए, ला उक्सिमु बिहाजल बलद, नहीं नहीं मैं इस शहर की शहादत पेश करता हूं। तो ला वहां फिर किस चीज के लिए आ गया, किसी भी जुमले को शिद्दत देने के लिए। खैर आगे देखिए, ला तन के हो, लफ्ज न कहा, ये बहुत अहम लफ्ज है। आज इससे आपको एक नया ही एंगल समझ आएगा शादी के ताल्लुक का, और जो वाकई आज के दौर में इतनी चीजों में खो गया है। हमारे जहन में लफ्ज शादी आते क्या आता है, सबसे पहले मंगनी, बात पक्की, अंगूठी, जोड़ों का लेन देन, फिर डेट फिक्स होगी, फिर हॉल चूज होगा, फिर उसके बाद जोड़े बनेंगे, फिर शादी ब्याह होगी। सच बताएं, कोई गलत मैं बात कहूं तो आपको पूरा हक के बीच में भी बोल दें। फिर लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट है, जिधर शादी का लफ्ज आता है ना, साथ ही जहन में तसव्वुर आता है शॉपिंग, पैसे, मनी, बाजारों के चक्कर, धक्के खाने हैं, ये करना है। खैर ये कार करा के फिर शादी शुरू होती है, आज मेहंदी, आज उपटन, आज बाबे, आज फलां, आज ये करना है, आज ये करना है। अब लड़की को पीला जोड़ा पहनाना है, अब लड़कियां ले आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, फिर ये होगा, फिर बारात, फिर बारात के बाद बारात को लंबा चौड़ा खींचते जाए, कितनी लंबी, कितनी, 500 लोगों की बारात आती है, 500 लोगों का खाना लड़की के घर से लड़के वाले उचक के ले जाते हैं। यह अब इस वक्त मौजू नहीं है बात करने का, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि आज आपको सिर्फ लफ्ज निकाह से मैं आपको समझाना चाहती हूं कि ये सब कुछ जिसको आप कहते हैं ना, जिसको मैं आप निकाह से समझे हैं, या कोई गोरा हमसे पूछे सुनाओ कि निकाह का क्या मतलब है, तो हम उसको ये सारी लिस्ट दे दें, फिर शादी होती है, फिर उसके दुल्हन आती है, फिर वलीमा होता है, फिर पहला फेरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी किसी एक शादी में ये नहीं था, आपकी बेटियों में नहीं था, तो भी ये दीन नहीं हो सकता। लफ्ज निकाह का लफ्जी मानी होता है मिलाना और जमा करना। अब मिलाना कैसे, मतलब आप देखें ये पेन है ना, ये अब आपके पास है, ये एक पेन है, ये इसका कवर है। अब ये मैं इन दोनों को मिला दूं, ये निकाय से, और कैसे मिलाते हैं आप, मैं दोनों हाथ मिला दूं, नहीं ऐसा नहीं है। यानी निकाह के अंदर जो लफ्ज मिलाने और जमा करने का है ना, इस तरह मिलाना जैसे नींद आंखों में घुल जाती है। ये जुमला लिखें, फिर आज आपको पता चलेगा शोहर क्या होता है और बीवी क्या, और आज आपको समझ आनी चाहिए कि हमारी क्यों नहीं बनती, हमारी निभती क्यों नहीं है। निकाह कहते इस तरह मिलाने को जिस तरह नींद आंखों में घुल मिल जाती है। अरब लोग कहते हैं नकहन नवास, नींद इसकी आंखों में घुल गई, ये एक मानी, नींद का आंखों से मिलना। कैसी आंखें बंद होने लगती हैं, कभी छोटे बच्चों को देखा करें, वहां बैठे बैठे झूलते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं, गोद में सो रहे हैं, कुर्सी पे सो रहे हैं, गाड़ी में बैठती जो बच्चे सोते, उस बेखुदी को महसूस करें। दूसरा मानी, जिस तरह बारिश के कतरे जमीन में जज्ब हो जाते हैं, उसको नकाह कहते हैं। अरब लोग कहते हैं नकहल मतरुल अर्दा, बारिश का पानी जमीन में खूब जज्ब हो गया। ये कब बोलते हैं? जब बारिश का पानी जमीन की ऊपर की खुश्क सतह से नीचे गुजरकर जमीन की नमी तक पहुंच जाए। दो बातें समझ आ गई हैं आपको? दोनों में ना एक बेसाख्तगी दिखेगी। बस इससे समझिए कि कुरान पाक ने मर्द और औरत की खानदानी जिंदगी के लिए जो लफ्ज निकाह इस्तेमाल किया है ना, तो इससे मुराद मियां और बीवी का ऐसा ताल्लुक जैसा आंख और नींद का होता है। दोनों एक दूसरे में इस तरह जज्ब हो जाए जिस तरह आंखों में नींद घुल जाती है, या फिर जिस तरह बारिश जमीन में जज्ब हो जाती है। ऐसा ताल्लुक और वो उम्र भर के लिए इसी सूरत में पैदा हो सकता है और कायम रह सकता है जब मियां बीवी में फिक्र, नजर, सोच, टेस्ट, तसव्वुरात, ख्यालात की हमाहंगी हो। बात समझ गए? सेम पर्सनैलिटीज, सेम गोल, सेम मोल, आप नॉर्वेजियन में मोल लिख लें। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ तब होती है जब आपका मेंटल लेवल एक होता है, और यही निकाह की बुनियादी शर्तें हैं। और कुरान पाक में भी आता है और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के वक्त कफ ढूंढो। कफ, काफ, वाव। कफ क्या होता है? बराबरी, यानी शादियां बेजोड़ नहीं होनी चाहिए। लड़का अल्ट्रा मॉड और लड़की अल्ट्रा दीनदार, और लड़का बहुत पढ़ा लिखा और लड़की बिल्कुल अनपढ़, लड़का बहुत खूबसूरत लड़की वाजबी, यानी हत्तुल वसा कोशिश करनी चाहिए सिमिलैरिटीज की। स्टेटस भी मिलना चाहिए, अगर एक कंवारा है दूसरा कंवारा है, एक मैरिड है दूसरा मैरिड, एक बच्चों वाला है दूसरा बच्चों वाला, क्योंकि ये मिलता है। चार छह लफ्ज लिख लेना दोबारा, कि जब आपस में सोच मिलती हो, जौक मिलता हो, टेस्ट मिलता है ना, मिजाज मिलता हो, ख्यालात, तसव्वुरात, नजरियात, इतकाद मिलता हो। हम क्या कहते हैं? दीनदार लड़का चाहिए। आप कहते हैं दीन के कितने नए रंग है, अल्लाह की बना। याद रखिए, शादी करना दो लोगों का ऐसे है जैसे बिजली के दो तारों को जोड़ना। सेम तरह के दो तार इकट्ठे जोड़ देंगे ना, धमाका हो जाएगा। बाज बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज होती, दोनों बहुत अच्छे होते हैं। हजरत जैनब बहुत अच्छी थी, हजरत जैद भी बहुत अच्छे थे, नहीं बनी। तो लिहाजा शादी के अंदर ये जो चीज है ना, इसको देखें। और जाहिर है कैसे ताल्लुक के लिए भी बाहमी रजामंदी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। तरादिम बैनहुम का लफ्ज आता है। और रजामंदी कब होती है? जब लड़का और लड़की बालिग हो, अपनी अकल समझ इस्तेमाल कर सके। कुरान में आप देखिए बलूगत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल आता है, हत्ता बलगुन निकाह, जबकि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। हत्ता यबलुग अशुद्दहु का लफ्ज आता है। अशुद्ध कहते हैं बड़ी ताकत को, बचपन और बुढ़ापे के बीच की उम्र होती है। तो फिर निकाह के लफ्ज को आप समझ गए थोड़ा सा। एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है अकद, अकद, अकद मसनूना का लफ्ज आता है। वो जहां आएगा वहां उसकी भी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह दूंगी, लेकिन एक जगह उकदतुन निकाह भी आता है। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि निकाह कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा माल, वक्त, एफर्ट्स, नमाजें और बेतरतीबी जिंदगी में कब आती है? जब कोई शादी होने होती है। गलत के सही, पहले दिन से बच्चे के पैदाइश पे माँ ख्वाब देखती है, मेरा खलौता बच्चा, इसको मैंने चाव पूरे करने हैं। और उस बच्चे की शादी से छह माह पहले से शॉपिंग कर रही होती है, और शादी वाले दिन उसके इतने इतने पाँव सूजे होते हैं, फिर भी लोग उससे खुश होके नहीं जाते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बेटियों वालों का भी हाल कुछ इससे फर्क नहीं है। आज हमने शादी को एक सेलिब्रेशन बना दिया, आज हम शादियों को सेलिब्रेट करते हैं। असल शादी क्या है? मस्जिद में एक मर्द आता है, अल्लाह के नबी निकाह करना है, हाजत है। देखिए उस दौर में नौजवान यंगस्टर्स, जब उनके अंदर कोई हिजान जो फितरी जज्बे वक्त के साथ आते थे, तो वो लीकर स्टोर नहीं जाते थे, वो क्लब में नहीं जाते थे, वो कॉल गर्ल्स को फोन नहीं करते थे, वो सीधा मस्जिद में आते थे, जिक्र शॉप में। क्या अल्लाह के नबी फितरी जरूरत है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, अब क्या करें? अच्छा वो फलां घर है उधर चले जाओ, उधर भेजा, निकाह की बात है, अब जाके रिश्ता मांगा। काले रंग का लड़का था, हबशी था, परदेसी था, आप कह लीजिए वीजा भी नहीं था उसके पास नॉर्वे का, खानदानी भी नहीं था, कुरैशी भी नहीं था, यानी गुज्जर नहीं था। आप अपने हालात पे ले ना, हमने तो गुजरों में करनी है, वो तो गुजर भी नहीं था। आपने वीजा भी लेना था, उसके पास वीजा भी नहीं था, कारोबार भी कोई अपनी टैक्सी तो हो कम से कम, वो भी नहीं थी। और माँ बाप सोच में पड़ गए, करें तो क्या करें। तो बच्ची समझदार थी, उसने कहा कि देखें ये काला है लेकिन जिसने इसको भेजा वो तो गोरा है, बद्रे मुनीर। अगर इसके पास कुरैशी नसब नहीं है तो जिसने भेजा वो तो कुरैशी है, अल्लाह के नबी ने ये मेरे लिए भेजा ही अच्छा ही होगा। इतनी वैल्यू थी उनकी नजर में इस चीज की। कहा अच्छा बेटा तुम्हारी मर्जी, जाओ शादी कर दी। थोड़े ही अरसे के दौरान वो शख्स मदीना का अमीर शख्स बन गया, उसने कारोबार किया, अल्लाह ने बरकत दी। याद रखिए शादी दुआओं से निभती है, बरकतों से निभती है, दुआएं लेने वालों से निभती है। पहले दौर में बच्ची बच्चे को जोड़कर माँ और बाप दोनों तरफ के मुसल्लों पे खड़े हो जाते थे कि अल्लाह अब इनके दिल जोड़ देना, अब इनकी आज का रात बड़ी अच्छी गुजरे, इनका दिल मिल जाए, ये आपस में एक दूसरे को समझ बीत जाए। आज जब माँ भी नाचेगी, बच्चा भी नाचेगा, बच्चे की भी बच्ची की भी, तो वो कोई बरकत वाली दुआ होगी। याद रखिए मैं अक्सर कहती हूँ शादी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से निभती है। ना आपके करतूत काम आएंगे, ना आपकी खूबसूरत शक्ल काम आएगी, ना आपकी बेटी के 10 हुनर काम आएंगे, वो सब हाथ में अगला पकड़ा के अगले दिन चला जाएगा, मुझे नहीं चाहिए रखे अपनी हुर परी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जोड़ता है। वमिन आयाति ही, सूरत रूम में आप पढ़ेंगे, ये अल्लाह की निशानी है। इज जस्ट लाइक मिरेकल। दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज, मर्द और औरत पर्सनैलिटी से बहुत फर्क है। एक छत के नीचे रह जाना उनका पूरी जिंदगी, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और आज के दौर में तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। तो लिहाजा इस्लाम ने यहां इस चीज को बाउंड कर दिया कि तुमने इस निकाह को नहीं करना। अब देखिए जरा अगला लफ्ज देखिएगा, किससे नहीं करना? मुशरिकात। मुशरिका के लफ्ज, और आगे मुशरिक भी आ रहा है, ये जितने भी दफा लफ्ज मुशरिका आएगा ना उस पर इकट्ठी बात करती हूँ। क्या रूट होगा इसका? शीन रा काफ। इससे क्या बनता है? शाबाश। शिर्क क्या होता है? आज मैं अपने पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि उम्मते मुस्लिमा को शिर्क का सही मफहूम भी नहीं पता। पहले तो वो शिरक कहते हैं शिर्क को, शिर्क कहते हैं चिमट जाने को, चिमटना, खलत मलत हो जाना। जैसे वो कहते हैं ना इंटरमिंगल, इंग्लिश का लफ्ज मुझे आसान लगता है, इंटरमिंगल। अरब लोग कहते हैं शारकतु फुलानन, फुलां उसका साथी हो गया। इस तरह कहते हैं इश्तरकल अमरु, मामला गुड़मुड़ हो गया। ठीक है, तो शिर्क एक खास टर्मिनोलॉजी भी है जिसको इस्लाम ने बहुत कसरत से रखा है। इसी तरह आप देखिए कि शिर्क शिकारी के जाल को भी कहते हैं। जाल डालता है ना शिकारी जो परिंदों को लेने के लिए, वो छोटे छोटे रास्ते जो बड़े रास्ते से निकले और आगे जाकर खत्म हो जाएं, इसका वाहद भी शिरका है। तो शिर्क अगर आम टर्मिनोलॉजी में देखे तो अल्लाह वाली खूबियां किसी दूसरे में ढूंढना, गैर खुदाई कुव्वतों को अल्लाह का हमसर समझना, जो इख्तियारात अल्लाह के लिए खालिस हैं उनको दूसरों में देना, फिर इसमें दूसरों की लाइफस्टाइल, कानून साजी, हक के मलकियत, यानी अल्लाह वाले हक दूसरों को देना, सीधी सी बात है। और अल्लाह का हक है कि उसकी हर ठीक को भी सही कह दो, तुम्हें ठीक नहीं लगती उसको भी ठीक कह दो। तो बुनियादी तौर पे यहाँ अगर टेक्स्ट और तफसीर के नाते से बताओ तो मुशरिक से कट्टर मुशरिक मुराद है, पेगन, फायर वर्शिपर, आइडल वर्शिपर। शिर्क के बहुत सारे दर्जे हैं, आगे आप पढ़ते जाएंगे जहां भी ये लफ्ज आएंगे, लेकिन यहां मुशरिका से मुराद क्रिश्चियन शिर्क नहीं है, जो कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ना इधर मुराद यहूदी औरत है, ना इससे मुराद मुसलमान औरत है जो नमाज नहीं पढ़ती, क्योंकि वो भी मुशरिक हो जाती है। यहां लिखे टर्मिनोलॉजी के मुताबिक यहां शिर्क मुशरिका से मुराद पेगन है, बुतों की पुजारी। मक्का जहां पे ये आयतें नाजिल हो रही थी वहां ये सारे इर्द गिर्द के लोग इसी किस्म थे। यानी एक मुसलमान एक हिंदू औरत से शादी नहीं कर सकता। जो औरत खुद को डिक्लेयर करती है कि मैं बुत प्रस्त हूं और मेरे घर में पूजा होती है और ये मेरा राम है, ये मेरा कृष्ण है, सीधी सी बात है, चाहे वो हीरोइन हो, चंद उसके नाम बोल दीजिए, चाहे बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर जाके लोग उनको देख कर अपनी हवस बुझा लें, लेकिन वो उनके साथ निकाह नहीं कर सकते। वजह क्या है? वही लफ्ज याद कीजिए, आंखों में नींद बन के पड़ेगी वो औरत और वो बानी के कतरों की तरह जमीन में जज्ब होगी। देखिए शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, ये एक दोस्ती का ताल्लुक है। आप देखिए कि दिन रात में, मैं अक्सर ये मिसाल दे देती हूं कि शादी कर दी आपने एक मुश्रिक औरत की एक मुसलमान मर्द से, शादी हुई, इस्लाम का हर काम ही दुआओं से शुरू होता है, इस्लाम में मर्द ने आते ही पहले बीवी के बालों को हाथ रखना है, सुन्नत है। कि आपने हजरत फातिमा के घर जाकर हजरत अली को बताया था कि अपनी बीवी के बालों में हाथ रखो और फिर दुआ मांगी। किसको आती है ये दुआ? शौहर बीवी के बालों को हाथ रख के एक दुआ मांगता है। कितनों को आती है? आप में से मैरिड भी अपने आप को देखकर अपने बच्चों की, मैं शादीशुदाओं को देख लें, अब वो तो घबरा जाएगी, ये मेरे बाल खींचने लगा है। फिर वो थोड़ी देर उससे बात करेगा, कोई अल्लाह की बात होगी, फिर अगर शौहर बीवी का ताल्लुक है वो फिर दुआ पड़ेगा। वो कहेगी ये क्या, पता नहीं मेरे ऊपर जंतर मंतर पड़ रहे हो। इस्लाम कहता है शौहर बीवी के ताल्लुक के बाद तहारत जरूरी है। वो गुसल करेगा, वो कहेगी मुझे नहीं जरूरत करने की। थोड़ी देर में फजर का वक्त होगा, अजान होगी, मर्द कहेगा आई हैव टू गो फॉर सलात। वो कहेगी क्या मतलब? आप देखिए, एक रात से लेकर अगली रात तक 24 घंटे में कम से कम 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आएंगे। जुम्मा होगा वो जुम्मा पढ़ने चले जाएगा, 5 दफा दिन में वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है। अगर तो ऐसा मुसलमान है तो वो तो नहीं निभेगी ना। दो बात से में से एक बात जरूर होती है, जो अल्लाह ने कहा ना कि ये तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ, या घर खराब होगा या दीन खराब होगा। और मैं ऐसी बीसियों मिसालें आपको दे सकती हूँ कि ऐसे बेजोड़ रिश्ते, इवन मुशरिका से मुराद क्रिश्चियन ज्यूस, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो इशू आएगा सूरत मायदा में, यहां नहीं उसका जिक्र। इवन ऐसी शादियां भी हुई तो वो दीन खराब हो गया, वो जुम्मे को उनके साथ मस्जिद जाने लगी और वो उनके साथ संडे को चर्च में चले गए, फिर खुश है। एक मोमिन घर, एक इस्लाम वाला घर दो फर्क पर्सनैलिटी से बन ही नहीं सकता। इस्लाम कहता है फौरन काट दो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने गलत कर दिया ना रिश्ता शादी के बाद, तुम्हें अगले दिन पता चल गया लड़का नमाजी नहीं, शिर्क करता है, शराबी है, बस दूसरी रात नहीं आनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, वही कट ऑफ दिस थिंग, आसानी से हो जाएगा। हम 30-30 साल साथ रह लेते हैं लेकिन हमें पता होता है मर्द खराब है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये आज जो आपको डिसऑर्डर सोसाइटीज का दिख रहा है, आप खोल के उसका डिसेक्शन करेंगे ना, अल्लाह के इस एक हुक्म के इनकार पे है। बेजोड़ शादियां, बिगड़े हुए लड़कों की शादियां माएं कर देती नहीं, वो आएगी ना वो ठीक कर लेगी, वो कुरान पढ़ी हुई है, यानी माँ तो कर ना सकी, अब वो एक 16-17 साल की लड़की कर लेगी आपके बेटे को ठीक। और इसी तरह मुंह से 10 बातें कहते हैं, बड़ा दिल करता है अच्छी लड़कियां मिले, नसीब वाली मिले, पढ़ी लिखी मिले, नस्लें संवरे, बेटे आपके जो है वो अल्लाह रहम करे उनको पता नहीं क्या क्या खराब आते हैं। याद रखिए ये चीज इस्लाम में थी ही नहीं। आप नबी सल्लम की शादियां देखें, 9 बीवियां भी एक वक्त में रहीं, टोटल 11 भी बनी। आप एक एक बीवी के हालात जिंदगी पढ़ें, एक औरत है सिर्फ आपकी हिस्ट्री में कि जिसने आते ही शादी वाली रात ही आपसे कहा था मैं आपसे पनाह मांगती हूँ, अल्लाह की पनाह में आती हूँ, यानी उसने कहा मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आपने बहुत बड़ी हस्ती की पनाह मांगी है, मैं आपको तलाक देता हूँ। रुमाना शायद नाम था उसका, आएगा उसका तस्करा तफसीर में कहीं ना कहीं। तो बहरहाल यहाँ ये बात आपको वाजे हो गई कि ज़ाहरी खूबसूरती और हुसन ये बड़ी आम बात है, असल चीज़ क्या है कि शिर्क ना हो। और आप नोट कीजिएगा कि शिर्क जब अल्लाह का बंदा मुखलिस ना रहे तो शौहर का कैसे रहेगा। और मैं अक्सर ये चीज़ या कनाबुदू के साथ भी शेयर करती हूँ कि अल्लाह के साथ है या कनाबुदू या कनस्तैन। शौहर बीवी का ताल्लुक क्या है? बीवी क्या कहती है शौहर को? मैं आपकी ही बीवी हूं। आज जाके कोई हम में से एक अपने शौहर को कह दे कि वैसे मैं आपकी भी बीवी हूं, तो फिर देखिए शिर्क का फर्क समझ आएगा आपको। बेगैरत से बेगैरत शौहर भी कहेगा मेरी भी नहीं तो उसी की रह जिसकी तो और है। गैरत का जनाजा निकल जाता है जब एक औरत अपने मर्द के सिवा किसी दूसरे के बारे में तसव्वुर में भी कोई ख्याल लाती है। वैसे तो कोई बात होना वो तो दूर की बात है, तसव्वुर में भी अगर कोई आता है, मुशरिक बेवफा होता है। याद रखिए जो अल्लाह के साथ उसके इतनी नेमतों को पाकर एहसान नहीं मानेगा ना उसके, तो वो फिर दूसरों के भी नहीं करेगा। जो रब की नेमतें पाके उसको छोड़ गया तो वो आपको खुशी कहाँ देगा। ये दूर के ढोल चमकते और सुहाने। और मैं कहती हूँ इंडियन मूवीज को देख देख कर, हीरोइनों को देख कर जो आहें भरती लड़कियां मैंने देखी हैं, और जो हीरोइनों के नाम ले लेकर बेटे माओं को कहते हैं ऐसी चाहिए। वल्लाह मुझे एक माँ का जुमला नहीं भूलता, कहता मुझे हीमा मालनी चाहिए। ये पुरानी बात है, वो अब तुम्हारे भी गई होगी शायद, देखो पता नहीं क्या जुर्म हो गया मुझसे। तो मैंने कहा ये हीमा मालनी इसको दिखाई किसने थी? अब इसका कोई जवाब नहीं। अब्बा लगाते थे तो दादा लगाते थे तो बच्चों ने भी देख लिया। बिलीव मी, इस वक्त हम नॉर्मल जिंदगियां नहीं गुजार रहे। आज भी वही मोहब्बत है जो आयशा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, उस जोड़े में जिसमें ज़हनी हम मांगी है, वो दुनिया की जन्नत है, वो दुनिया का सुकून है, वरना निरी सर खपाई, निरी सर खपाई। सिर्फ 1-2 महीने शादी के मियाँ बीवी खुश देखे हैं मैंने, उसके बाद मसले गड़बड़े। कभी आप खुश नहीं रह सकते ऐसे मर्द के साथ जिसका दीन खूबसूरत नहीं है। आपने फरमाया कि जब तुम्हारे पास ऐसे का रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करो। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमने दीन देखा था, लड़का हाफिज था। नहीं, नबी ने एक और भी बात कही थी, उसका अखलाक। ये हदीसें आपने सुनी हुई है पहले से। मैं कहती थी दीन तो समझ आती है, अखलाक क्या बात है। कुरान पढ़ने के बाद समझ आया कि अखलाक तो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ऐसी फिर बातें सुन सुनकर इंसान परेशान होता है। और बिलीव मी, मैं इस जगह बैठकर आपके से एग्जेजरेशन नहीं करूंगी, मैं अपने गुनाहगार कानों से और अपनी आंखों से अब इस दौर में ये जो इरा चल रहा है ना, इस साल 1.5-2 साल का, मैंने अनमैरिड लड़के लड़कियों के किस्से नहीं सुने इतने जितने मैंने मैरिड लोगों के किस्से कहानियां सुनी है। मुझे नहीं समझ आती क्यों, क्या हो गया दुनिया को। ये भी मुझे लगता है कोई पीछे से जरासीम इन्होंने कोई मीडिया के थ्रू डाला है, जिसको देख देख कर, देखे ना आप ड्रामे में एक हीरो देख रही हैं, तो मियाँ तो आपका वैसा नहीं है, सच्ची जो बात है। तो आपको कहाँ अच्छा लगना है, वो सीधा साधा गंदी मूवीज लोग देखते हैं नेट से। अब उसमें जो कुछ वो मर्द करते हुए होंगे या उनका जो गेटअप होगा, वो आपके शौहर का तो नहीं हो सकता, तो आपको शौहर फिर अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात है। और सेम बात बीवी के साथ है, खाना पकाती, बर्तन धोती, सफाइयाँ करती बीवी, और वो जो काकरोच भी मारे हैं तो साथ उनकी साड़ी का पल्लू हिलता है और मेकअप किए हुए वो पकवान पकाती है, उसमें बड़ा फर्क है। मैं पूरे यकीन से साबित कर सकती हूँ, मीडिया ने आज हमारे घरों को बर्बाद किया है। हमारे बच्चे जो हमारे आगे बोले, वो भी मीडिया का असर है। दो ही मुसीबतें हैं पूरी दुनिया में, ये नॉर्वे की नहीं बात है, मीडिया और स्कूल। बच्चे दो चीजों से मुतासिर हैं, या अपने उस्तादों से, स्कूलमेट्स, रूममेट्स जो भी हैं, और या मीडिया। इससे जो दिखाया जा रहा है घर में, अम्मा है ही नहीं वैसी, तो नुकसान क्या हुआ कि उलाई का यदू न इलन्नार। आज आप देख लीजिए आग की कहानियां आपको घर घर दिखेंगी। ये तो अल्लाह ने बहुत सारे पर्दे रखे। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम अपने आप को ठीक कर लो, शर्त है अगर करना चाहते हो। हत्ता, इसको भी थोड़ा देखिए, यहां तक के यानी जब तक ये काम ना हो जाए, देर इज नो अदर वे। और आगे इंशाल्लाह सूरत नूर में एक वाक्या सुनाऊंगी आपको। बस लोग कहते हैं इस आयत पे भी वही आता है, लेकिन वहां तक तो अब बात जाएगी तो हम देखेंगे। ये जो लफ्ज ना अमतु, अमा क्या है, अमा कहते हैं बंदी को। अरबी जुबान में आजाद औरत को हुर्रा कहते हैं, हुर्रा, हा से अल हुर्रु बिल हुर का लफ्ज पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह आगे कुरान में। तो हुर्रा की जिद है अमा, ठीक है। मर्द के लिए अब्द आता है, वो भी आ रहा है इसी आयत में, और मुअन्नस के लिए आमा आता है। और आमा की जमा क्या है, ईमा, वो भी लफ्ज दोनों कुरान में आते हैं। चलिए आमा देखे ना, तो फिर जरा सा थोड़ा सा आपको और खुश कर दूं, तो लफ्ज आप देखिए कि आयत में आए आजबत कुम। मैं चुन चुन के लफ्ज थोड़े से अलग बता रही हूँ। लफ्ज आजबत कुम और अजब दोनों पढ़े हैं ना इधर अभी। उजब किसको कहते हैं, आयन जीम बा, पीछे इसका तस्करा किया था, तुझे उसकी बातें दुनिया में अच्छी लगती हैं, वही लफ्ज है ये भी। तो अल उजब कहते हैं जानवर की दुम का वो हिस्सा जो पीठ के साथ मिला होता है, यानी जहां से उसकी दुम चिपकी होती है ना, उस हिस्से को उजब कहते हैं। इसी से फिर हर चीज के आखिरी हिस्से को उजब कहते हैं। उर्दू में आप बोलते हैं ताज्जुब हुआ, वो भी ये लफ्ज है। ताज्जुब उस हैरत को कहते हैं जो किसी बात का सबब मालूम ना होने की वजह से इंसान को लाहक होती है। तो यहां उजुब से मुराद क्या है, अरबी जुबान में उजुब जो है ना खुद पसंदी के लिए आता है। उस घबराहट को भी उजुब कहते हैं जो किसी काम को बहुत बड़ा समझने से तारी हो। यानी कोई आपसे कि 50 लोगों का खाना पकाएं 2 घंटे में, तो हैरत होगी ना मैं कैसे पकाऊंगी। तो उस घबराहट को जो पैनिक आपके ऊपर होगा, उसको भी उजुब ही कहते हैं। बहरहाल इसी से लफ्ज फिर अजीब भी है, और उजुब के मानी गुरूर और तकबर के भी होते हैं। अब्द लफ्ज किसको कहते हैं, अब्दुन, उर्दू में कभी सुना ये लफ्ज, बहुत दफा सुनते हैं, इबादत का लफ्ज सुना। अब्द किसको कहते हैं, एक खुशबूदार पौधे को। आज यहां से आपको अबूदियत की असल समझ आएगी इंशाल्लाह, इया कना वुदू में भी आप इसको समझ लें। खुशबूदार पौधे को कहते हैं जो ऊंटों के लिए बड़ी कशिश रखता है, यानी जड़ी बूटियों में एक जड़ी बूटी होती है जिसमें बड़ी खुशबू आती है, ऊंट खाना चाहता है उसको। अब जब ऊंट उसको खाता है ना तो मोटा हो जाता है और फिर उसका दूध भी बहुत आता है। लेकिन अपनी खासियत जिसको आप कहते हैं ना तासीर, उसके एतबार से ये पौधा बहुत गर्म होता है, मिजाज इसका गर्म होता है। अब ऊंट ने इसको जब खाया तो प्यास लगती है। चल रहे मेरे साथ? खुशबूदार पौधा ऊंट को बड़ा पसंद है, ऊंट उसको खाना चाहता है, ज्यादा खा लेता है। लेकिन ये पौधा बड़ा गर्म है तासीर में, जैसे करेले खाने के बाद प्यास लगती है। हाँ, तो पानी पीता है ना, तो प्यास जब उसको लगती है तो ऊंट पानी मांगता है। इस कैफियत को अब्दियत कहते हैं। अब जरा थोड़ा सा आप गौर कीजिए, तीन चीजें इस एक लफ्ज में, कशिश किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, फिर प्यास की तकलीफ यानी इब्तदा में प्यास की तकलीफ हुई और बिल्कुल ही ज्यादा हो गई, और तीसरा लफ्ज है मोटा होना, जैसे दूध का ज्यादा होना। तो अब यहां देखिए, अबूदियत क्या है, अब्द होना क्या है, इब्तदा में तकलीफ होती है। आप अपने नफ्स को अल्लाह का बंदा बनाएं, बड़ी तकलीफ होगी, बट अपनी तबीयत के एतबार से आपके अंदर ये अर्ज है कि मुझे अल्लाह का बनना है, अब्द बनना है। कशिश है इसमें। अरब लोग कश्ती पर तेल या चर्बी या तारकोल मल देते हैं। अब कश्ती की शक्ल खराब हो जाती है, खूबसूरत नहीं रहती। लेकिन फायदा क्या होता है कि पानी के अंदर जब कश्ती जाती है तो उस तेल की वजह से वो फूलने से और गलने से बच जाती है। ऐसी कश्ती को अरब लोग सफीनतुन, अब्द है ना उसी से, सफीनतुन माबदतुन कहते हैं। तो अब्दियत क्या है, मैं अपने लफ्जों में समझाती हूँ, शायद आपको मैं आसान बात कह दूँ। शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है अपने नफ्स को अल्लाह का बंदा बनाना। दिल करता है सबकी मानो, मौजें करो, मस्ती करो, ऐश करो। ये क्या कुरान में बैठे हुए इधर कुछ और कर रहे होते, कहीं घूमते कुछ करते। लेकिन अल्लाह कहते इब्तदा में जरा सी खुद को मुश्किल दे लो, सख्ती आ जाएगी, मुश्किल आएगी, बट इंजाम बड़ा खूबसूरत होगा, बहुत दूध देने वाले बन जाओगे। हमें अपने इस नफ्स को बहुत ज्यादा टेम करना पड़ता है। अल्लाह के हुक्मों की जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगती है ना, उससे बाहर मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, लेकिन ये इंसान की बेहतरी के लिए होती है। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात करके मुझे आपको बता दिया कि ऐसे रिश्ते बाहर बड़े फैंसी लगते हैं, ग्लैमरस, आज एक जहाज से उतरे दूसरे में, दूसरे से उतरे तीसरे में, बट इसका अंजाम बुरा होगा। तुम अल्लाह की मर्जी को मान लो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, फिर देखो क्या होगा। तो अब बात तो और भी हो सकती है, लेकिन बात पूरी करके आगे चलूंगी कि रिश्ते करते वक्त संजीदगी का मुजाहरा करे इंसान, जज्बाती ना हो, जल्दबाज ना हो, और ये ना सोचे कि ये रिश्ता ना हुआ तो पता नहीं अगला होना ही नहीं है। बाज दफा आप एक खास जगह पे रिश्ता सोच रहे होते हैं, हो जाए हो जाए, वो क्यों नहीं हुआ आज तक, अल्लाह ने आपको उसे अच्छा देना था। कब होगा? जब आप इसको दिमाग से निकाल लेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज इंसानियत को जो मुश्किलात चल रही हैं, इसके अल्लाह ताला बचा के रखे और रिश्तों के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर फैसले करें।